और शोहदा के लिए इनके किताबों में, इनके बाइबल में लिखा हुआ है, पीपल बिलीव दैट दे आर डेड बट देयर डेथ किल्ड देयर सिन एंड दे आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये इनका कॉन्सेप्ट है कि जो मौत होती है शहीद की, वो सिर्फ उसके गुनाहों को खत्म करती है, असल में वो अल्लाह की मौजूदगी में जिंदा होते हैं। और हमें कुरान क्या कहता है, बल अहया उन इंद रब्बिहिम युरज़कून। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट वही है कि वो बल्कि उनको मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास, युरज़कून वो रिस्क दिए जाते हैं। तो ये यही कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम हमें देता है। और हम जानते हैं कि इस्लाम हमें ये भी बताता है कि शहीद के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाता है। तो ये जो पीपल ऑफ द केव है, इससे क्रिश्चियनिटी में एक ये बहुत इनके अकीदे का स्ट्रांग इम्पैक्ट जो था वो सामने आया कि इन्होंने डिराइव किया कि ये शोहदा थे और शोहदा जो हैं वो हमारी तालीमात के मुताबिक सीधे जन्नत में जाते हैं। एक और बिलीफ इनका जो था क्रिश्चियनिटी का, वो ये था रेजरेक्शन का, दोबारा मरने के बाद उठने का, रोज़े महशर का। जिस टाइम पर अल्लाह ताला ने इन असाबे कहफ को दोबारा से उठाया नींद से, ये वो वक्त था क्रिश्चियनिटी में जब क्रिश्चियनिटीज के अंदर बहुत बहस हो रही थी इस बात पे कि जब इंसान को दोबारा उठाया जाएगा तो क्या सिर्फ उसकी रूह को उठाया जाएगा या उसका जिस्म भी साथ में रेजरेक्ट किया जाएगा, क्या जिस्म को भी साथ साथ उठाया जाएगा। तो जब इनको भी उठाया गया तो इनका कॉन्सेप्ट यह हुआ, इनमें दो ग्रोह बन गए थे क्रिश्चियंस में। एक ग्रोह ये कहता था कि नहीं, सिर्फ रूह को उठाया जाएगा मरने के बाद। फिर जब ये सेवन स्लीपर्स बाहर आए इनकी कहानी के मुताबिक, तो जो दूसरा ग्रोह था उसने एम्फसिसली कहना शुरू कर दिया कि नहीं, अल्लाह ताला मरने के बाद इंसान को जिस्म भी देगा और अल्लाह जिस्म के साथ भी उठाएगा। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये तो शहीद हो गए थे, अब जो दोबारा उठे हैं तो एक तरह से इनका रेजरेक्शन हुआ है, अल्लाह ने इनको मरने के बाद दोबारा उठाया है। हम मुसलमान किस अकीदे के ऊपर हैं रेजरेक्शन के बारे में, हमारा ईमान क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्लाह ताला जो है हमें दोबारा उठाएगा, और हमारा सिर्फ और सिर्फ रूहानी रेजरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ रूह नहीं उठेगी, जिस्म भी अल्लाह ताला उठाएंगे। यकीनन वो जिस्म इस दुनिया के जिस्म की तरह नहीं होगा, उस जिस्म का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होगा। इसलिए कि जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जो जन्नतियों के जिस्म होंगे, उनकी जो बॉडी होंगी, उनके जो अल्लाह ताला उनको फिजिकल बॉडी देगा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट फिजिकल बॉडी होगी कि इतनी ट्रांसपेरेंट होगी कि उसके आर पार नजर आ रहा होगा। वल्लाहु आलम अल्लाह कैसा जिस्म देगा, लेकिन रूह के साथ साथ हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला जिस्म देगा। हाँ, वो जिस्म इस दुनिया के जिस्म की तरह नहीं होगा। जैसे आप अगर सूरह तारिक पढ़ती हैं तो जहां पर अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक फ्लूइड से तखलीक किया, और वो फ्लूइड जो कि इंसान की रिब्स और बैकबोन के दरमियान से आता है, सूरत तारिक आयत नंबर 7 और 8 में आता है, यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब, वो इंसान की रिब्स और बैकबोन से फ्लूइड निकलता है। और फिर अल्लाह ने आयत नंबर 8 में फरमाया, इन्नहु अला रजईही लकादिर, जैसे अल्लाह ने दुनिया में इंसान को पैदा किया है फिजिकली, अल्लाह कादिर है कि अल्लाह दोबारा भी इंसान को पैदा करे। हाँ, यकीनन इंसान की वो पैदाइश जिस्मानी तौर पर जो होगी या दोबारा उठना जो होगा, वो दुनिया की तरह एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। आप जहन्नम वालों के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज रखें, कि जहन्नमियों के जिस्म जलकर खत्म नहीं हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता इस दुनिया में किसी को आग लग जाती है तो वो तो इंसान जलकर एशेस बन जाता है ना, राख बन जाता है। कुरान में क्या आता है, बदलना जुलूदन गैरा, इंसान का जिस्म कैसा होगा कि उसकी खाल जलेगी, अल्लाह उसको और स्किन दे देगा। तो रूह की तो स्किन नहीं है, स्किन किसकी आएगी, वो स्किन बॉडी की होगी। अब वो बॉडी टेक्सचर कैसा होगा, वल्लाहु आलम, अहदीस हमारे सामने हैं, आप जब उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है बाज़ जहन्नमियों के जिस्म ओहद पहाड़ के बराबर होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे। जब स्किन इतनी मोटी होगी तो जाहिर बात है वो जलने में भी टाइम लेगी, और जहां जल जाएगी अल्लाह उसको रीजनरेट कर देगा। तो ये जिस्म जो होंगे, हमारा ईमान है कि अल्लाह जिस्म देगा, इंसान का रेजरेक्शन होगा, लेकिन वो जिस्म हमारे दुनिया के जिस्म की कंपोजिशन के ऊपर नहीं होंगे, वो एक अलग कंपोजिशन होगी। तो एक इनका कॉन्सेप्ट ये था, और इस असाबे कहफ के उठने से इन्होंने ये डिराइव और कर लिया, इसको मजबूती से थाम लिया अपने अकीदे को कि इंसान जब मरने के बाद उठेगा तो उसको जिस्म और रूह दोनों के साथ उठाया जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी के इस्लाम से टैली करते हैं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो इन्होंने इस वाक्य के साथ स्ट्रांगली अटैच किया और उसको अपने क्रीड का हिस्सा बना लिया, वो ये था कि तीसरा कॉन्सेप्ट इंटरसेशन का था, शिफात का था। और इनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो असल में एक दफा किसी अच्छे काम की वजह से जन्नत में पहुंच जाएगा, उसको अल्लाह ये इख्तियार दे देगा कि अब वो जिसको चाहे बैकडोर दरवाजे से जन्नत में अंदर बुला ले। ये इनका कॉन्सेप्ट था और ये हमारे अकीदे के बिल्कुल मुखालिफ है। जैसे मिसाल के तौर पे नजिया का ये लाउंज का दरवाजा है ना, मेन डोर, इन्होंने बाहर गमला रखा हुआ है। अब आप देखें कि वो आगे लाउंज में से जो आगे दरवाजा है वो बंद हो गया है, आपकी कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बाहर खड़ी है, आपको यहां से नजर आ रही है, तो आप क्या करें? आप कहती हैं अच्छा मैं अभी हिम्मत करती हूँ, मैं तो अंदर आ गई हूं ना, मैं जाती हूं। और आप जो है वो बायोनिक वुमेन बनी और आपने गमला हटाया और उन खातून को अंदर लेके आ गए। हम करेंगे ऐसा नजिया की इजाजत के बगैर? नहीं करेंगे ना। तो इनका ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही डिस्टॉर्टेड था। इनका ख्याल था कि जो सेंट्स होते हैं, जो सूफीज होते हैं, जो हमारे डेफिनेशन में सूफीज हैं, ये सेंट्स और ये अल्लाह के क्लोजेस्ट लोग जब एक दफा जन्नत में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ये बैकडोर जन्नत का एक्सेस फिर हर एक को दे सकते हैं। और जब इंसान ये कॉन्सेप्ट रखता है तो फिर इंसान का अगला कदम क्या होता है? फिर इंसान उनसे दुआएं मांगता है, फिर इंसान उनको खुश करने की कोशिश करता है, फिर इंसान जो है वही काम करता है कि जिससे उसको पता चले कि अच्छा भाई इनको खुश करो ताकि ये अल्लाह के हाँ हमारी सिफारिश करने के बायस बन जाए। तो ये चीज जो थी, ये असाबे कहफ से तीन इनके अंदर अकीदा जो है ये डिराइव किया इन्होंने और ये इनके अंदर आना शुरू हो गया। और आज भी आपको ये जो कैथोलिक्स क्रिश्चियंस हैं इनमें आपको ये चीज मिलती है सेंट प्रोटेक्शन के। असाबे कहफ के एंगल से इतनी नहीं मिलती, लेकिन इन जनरल क्रिश्चियनिटी के अंदर सेंट प्रोटेक्शन लेना बहुत कॉमन है। इसलिए कि वैसे भी आप जानते हैं, आप में से जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है यूरोपियन रेनेसांस की और उससे पहले के इलाके की, क्या असल में क्रिश्चियनिटी किस तरह से जो है वो डिराइव हुई है, आप सब लोग जानते हैं कि वो वक्त था कि जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी पावर पॉप को दे दी थी, पॉल को दे दी थी, हम सब उस चीज को जानते हैं। तो ये तीन बिलीफ थे जो इस वाक्य के साथ जो है वो क्रिश्चियन अकाउंट के अंदर हमें मिलते हैं। इनकी कहानी के मुताबिक ये नौजवान थे और ये वो वक्त था, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों को वो हिस्ट्री बताऊं एक सिनॉप्सिस की शक्ल में कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर हुई है। जैसे आप सब ने यूरोपियन रेनेसांस का पढ़ा होगा, आप सबको मालूम होगा कि एक वो वक्त था यूरोप के अंदर कि जिसमें एक बहस होती रही। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इनिशियली क्रिश्चियंस मोनोथियज्म पर थे, तौहीद पर थे, फिर सेकेंड सेंचुरी के बाद इनके अंदर डिविएशन आना शुरू हुई और इनमें बहसें शुरू हो गईं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे थे या ईसा अलैहि सलाम जो थे वो खुद अल्लाह थे, अल्लाह गॉड इनकारनेटेड इनका कॉन्सेप्ट है, और ये कि ईसा अलैहि सलाम जो है क्या उन्होंने हमारे गुनाहों की जगह सबकी गुनाहों की जो है सजा भुगत ली। ये सब बहसें इनके अंदर शुरू हो गई थी। अब ये जब इनके अंदर बहसें हो रही थी तो ये वो दौर था जिसके अंदर अभी एज अ ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी नहीं थी। जब आप इनकी भी असाबे कहफ की कहानी इन्हीं क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वो नौजवान उस टाइम पीरियड के थे जब रोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियनिटी एज अ ऑफिशियल रिलीजन नहीं आई थी। और इससे पहले पहले जो रोमन एम्पायर्स थे, ईसा अलैहि सलाम के बाद की बात है, तकरीबन समझ लीजिए ये 2-3 सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, ऑलमोस्ट 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी की बात है या इससे और पहले की। इनके ट्रेडिशन के मुताबिक ये वक्त था जिसमें इस वक्त रोमन एम्पायर के ऊपर क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन नहीं थी। और इस वक्त 2-3 तरह के जो थे कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट इन इलाकों में मौजूद थे। एक कॉन्सेप्ट क्या था, जहां पर बादशाह थे, किंगडम थे रोमन्स में, और वो ग्रीक माइथोलॉजी को फॉलो करते थे। एक कॉन्सेप्ट इनमें था, फिलॉसफी बहुत स्ट्रांगली इनमें आगे बढ़ रही थी। फिलॉसफी को हम सब जानते हैं ना कि यहीं से ये असल में आगे बढ़ना शुरू हुई है। और तीसरे इनके अंदर ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स थे। तो जिस वक्त में ये नौजवान आए हैं उस वक्त में पॉपुलर कल्चर जो था, जिस इलाके के ये लोग थे, इनकी कहानी के मुताबिक ये उस इलाके में थे जहां क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन नहीं समझा जाता था। और जो उस दौर का बादशाह था, उस इलाके का बादशाह था, वो असल में पॉलीथीस्ट था, मुशरिक था। तो जब ये इस इलाके में आए और ये जो थे ये एक तरह के रिवर्ट थे, इन्होंने ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाकर जो था क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था, तो ये वहां पर थे जहां पर बुतों की पूजा की जाती थी, आइडल वर्शिपिंग थे। और जो यहां का बादशाह था, उस बादशाह का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, अच्छा ये वो दौर था जिसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ चलते थे, इसलिए कि जो बादशाह का रिलीजन होता था वो सबको फॉलो करना होता था। आप अपनी लॉयल्टी कैसे दिखाएंगे बादशाह को? आपको लॉयल्टी ये दिखानी है कि जो बादशाह का दीन होगा आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो जो बादशाह का दिन होता था वही फॉलो करना पड़ता था। और इस दौर का जो बादशाह था उसके तीन गॉड्स थे, जो अक्सर आपको जो है वो बहुत आम गूगल सर्च करें तो मिल जाते हैं। इसके तीन गॉड्स थे, ज्यूस, अपोलो और एमेटे। ये जो तीन इनके ग्रीक गॉड्स थे, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये रोमन एम्पायर के असल में सपोर्टर हैं, इन्हीं की बरकत की वजह से जो है वो किंग को जो है वो पूरी सल्तनत मिली हुई है, और जो इनकी इनके सामने जो है वो अपनी लॉयल्टी शो करेगा, असल में बादशाह के सामने लॉयल्टी शो करेगा, और जो बादशाह के साथ लॉयल्टी शो करता था उसको सिटीजनशिप मिल जाया करती थी। आप इमेजिन करें कि ऐसा माहौल है जिसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन एक साथ है, जो बादशाह का रिलीजन होगा वो आपको फॉलो करना है। आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो है वो अमेरिका का सदर जो है वो क्रिश्चियन है, अब अगर यही सिनेरियो आप वहां फिट कर दें तो फिर मुसलमान वहां नहीं रह सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर, कि जो बादशाह का रिलीजन होगा, जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीजन होगा, वही बाकी सारे रिजीम को फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट उस दौर का था, आज ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करते थे ये लोग कि ये इन दोनों चीजों को इकट्ठा रखते थे, और किंग से लॉयल्टी शो करने के लिए जो किंग था, किंग ड्यूस उसका नाम आता है, और ड्यूस को अगर आप अरबी में तर्जुमा करें तो उसका तर्जुमा करते हैं दकियानूस। आप उर्दू में दकियानूस किसको कहते हैं? बैकवर्ड को कहते हैं ना, हम बहुत ही बैकवर्ड को कहते हैं। असल में दकियानूस का तर्जुमा जो किया जाता है किंग ड्यूस का, ये डीसीएस दोनों नाम इसके आते हैं, DECIUS, इसके लिए ये कहते हैं कि ये बहुत ही ईवल किंग था, बहुत जुल्म करने वाला किंग था, इसलिए अरबी में इसको दकियानूस तर्जुमा किया जाता है। तो ये जो किंग था ये एक मर्तबा इस सिटी ऑफ एफेसस में आया, और जब ये आया तो इसने लोगों की लॉयल्टी लेने के लिए ये अपने साथ पूरे अपने स्टैचूज लेकर आता था, वही तीनों स्टैचूज जो इनके फॉल्स गॉड्स है, ये तीनों स्टैचू लेकर आया और शहर की प्रोमिनेंट जगह के ऊपर वो स्टैचूज रख दिए गए। अब इसका मतलब ये था कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और उस स्टैचू के सामने जो है जो भी रिस्पेक्ट का तरीका उनका था वो शो करेंगे, ताकि पता चले कि ये सारे के सारे बादशाह के साथ हैं। अब यही इसी तरीके से वो स्टैचूज बड़े जायंट लाए गए। ज्यूस का स्टैचू वही है जो आपको अक्सर नजर आता है किताबों के अंदर, जो एक बड़ा जायंट स्टैचू जो है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत प्रोमिनेंट नजर आता है आपको अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं। तो ये तीनों स्टैचूज लाए गए और शहर के प्रोमिनेंट जगह पर रखे गए, ताकि लोग आए और अपनी लॉयल्टी शो करें। अब क्योंकि आपको बताया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स इकट्ठे होते थे, तो ये सिर्फ स्टैचूज जो आते थे ये सिर्फ ऐसे इलाके खड़े नहीं कर दिए जाते थे, पूरी साथ में फोर्सेस आती थी। आप इमेजिन करें ना कि कोई चीज जो है वो गवर्नमेंट, हमारे यहां तो वीआईपी जिस तरह से मूवमेंट होती है आपको अंदाजा कर लीजिए, तो स्टैचूज की भी वीआईपी मूवमेंट होती थी। तो जब स्टैचूज रखे जाते थे तो आसपास सब सिपाही खड़े होते थे, सोल्जर्स खड़े होते थे, और उन सोल्जर्स के साथ एक तरह एक प्रेशर डिवेलप किया जाता था, ताकि सारे आए उस इलाके के लोग और अपनी लॉयल्टी शो करें उन स्टैचूज के साथ और अल्टीमेटली बादशाह के साथ। तो हुआ ये कि इस इलाके में यही नौजवान थे जो असल में मोनोथियज्म के ऊपर थे, जो शिर्क नहीं करना चाहते थे, और जिनके लिए जिनका बिलीफ था कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की जाती है। अब जब बारी बारी सब लोगों को बुलाया गया तो इनकी भी बारी आई, और जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने उन स्टैचूज के साथ रिस्पेक्ट शो करने से इनकार कर दिया। अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने जो है वो ट्रंप खड़ा हो और आपसे कहा जाए कि जाइए ट्रंप के लिए चाय बना के लाइए, आप कहें मैं बना के नहीं ला रही, तो जो ट्रंप के आसपास उसके बॉडीगार्ड्स खड़े होंगे वो आपको क्या हशर करेंगे? वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर समझता है, एक इंसान इंसान से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल, तो जब इनकार किया इसने इन नौजवानों ने कि हम इन बुतों को रिस्पेक्ट शो नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है जो स्टैंडिंग आर्मी थी बादशाह की वो सबके सब ऑफेंडेड हो गए, बादशाह ऑफेंडेड हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है इनको फौरन पकड़ा जाए और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, इसलिए कि इन्होंने ट्रीजन किया है। जब आप बादशाह से गद्दारी करेंगे, जब आप बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दिस इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन, और आपने ट्रीजन किया है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको जेल में डाला जाएगा और आपको एग्जाम्पल बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कभी कोई इस माशरे के अंदर बादशाह के खिलाफ गद्दारी ना कर सके। तो इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया इनकी कहानी के मुताबिक। उसके बाद हुआ ये कि समहाउ किसी तरह से ये बताते हैं अपनी कहानी में कि ये जो नौजवान थे ये जेल से एस्केप कर गए, और जब ये जेल से भाग गए तो जेल से भागने के बाद समहाउ ये एक गार में जाकर रुक गए। अब क्योंकि जो किंग था, किंग डीसीएस, ये बहुत ही क्रूअल किंग था, और इस तरह से जो था इसको बहुत बुरा भी लगा कि जिसने मेरे खिलाफ गद्दारी की, मुझसे लॉयल्टी शोने की, वो भाग भी गए, तो उसने सारी तरफ अपनी फौजें दौड़ा दी कि इन लोगों को सर्च किया जाए, इनको ढूंढा जाए कि ये कहीं एस्केप ना कर जाएं। बहरहाल कुछ अरसे के बाद इन लोगों को ये नौजवान मिले, और जब इनको नौजवान मिले तो एक केव में थे, और ये केव में बहुत गहरी नींद सो रहे थे। ये वर्जन आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है ये मिलता है। अच्छा, जब ये सो रहे थे तो मिलिट्री ने इनको ढूंढ भी लिया, तो अब इन्होंने डिसाइड ये किया क्योंकि बहुत गहरी नींद सो रहे थे। कुरान यही कहता है ना कि फादा रबना अला आदानिहिम, हमने उनके कानों के ऊपर जो है वो थपक थपक के उनको सुला दिया, यानी कानों के ऊपर उनकी एक कवरिंग थी, उनको आसपास की आवाजें नहीं आती थी, कुरान हमें यही बताता है। तो जब इन्होंने देखा, इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि ये नौजवान यहां सो रहे हैं लेकिन बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, तो अल्टीमेटली बादशाह ने अपने जुल्म का इजहार करने के लिए ऐलान कर दिया कि अब इनके ऊपर दीवार बना दी जाए, यानी इनको बरी अलाइव कर दिया जाए, इनको यहीं पर दीवार के अंदर जो है वो जिंदा दरगोर कर दिया जाए। और इनको वहीं पर इसी तरह से इनके ऊपर दीवार बना दी गई। और फिर कुछ अरसे के बाद ये कहते हैं कि जो उसी इलाके में और कुछ तौहीद पर अमल करने वाले लोग थे लेकिन इनकी तरह बहादुर नहीं थे, उन्होंने आउटस्पोकन होकर बादशाह से जो है वो लॉयल्टी डिसलॉयल्टी का इजहार नहीं किया था, उनको पता था कि ये नेक बच्चे हैं, उनको पता था कि इन पर जुल्म हुआ है, उनको पता था कि इनको तौहीद पर कायम रहने के लिए इस इलाके में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन, एक तहरीर जो है एक टेबलेट पे लिख के वहां उस दीवार पे लगा दी। और वो इंस्क्रिप्शन जिसको आप तहरीर कहते हैं, जिसको आप टेबलेट कहते हैं, उस पर ये कहते हैं कि उनके नाम थे और उनका सारा ओरिजिन था कि वो किस इलाके के थे, और ये भी लिखा हुआ था कि किस वजह से उनको इस गार के पीछे जो है जिंदा दफना दिया गया। तो ये इंस्क्रिप्शन, इसका जिक्र आपको कुरान में भी मिलता है, असहाब अल काफी वर रकीम। रकीम अरबी जुबान में इंस्क्रिप्शन को कहते हैं, किसी तहरीर को किसी टेबलेट के ऊपर लिख देना। तो जिनकी सिंपथी थी उन्होंने इस तरह से इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो यहां लिख दी। एडिशनली इनकी कहानी में जो किताबों के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि ये नौजवान जो थे जब ये एस्केप कर रहे थे तो इनकी एक तरह से एक विल थी जो किसी ने सुनी थी, या एक दुआ थी, या इनकी प्रे थी जो किसी ने सुनी थी। और वो क्या थी? वी बिसीच यू गुड शेपर्ड। इन्होंने अल्लाह से दुआ की, वी बिसीच यू गुड शेपर्ड हु हैज चोजन हिज सर्वेंट्स गाइड योर फ्लॉक फ्रॉम दिस वुल्फ हु हैज थर्स्ट फॉर ब्लड। अभी शेपर्ड किसको कह रहे हैं? वी बिसीच यू गुड शेपर्ड किसको कह रहे हैं? अल्लाह को कह रहे हैं, शेपर्ड अल्लाह को कह रहे हैं। हु हैज चोजन हिज सर्वेंट्स गाइड योर फ्लॉक, असल में ये अल्लाह या जीजस को कह रहे हैं। और गाइड योर फ्लॉक, फ्लॉक किसको कह रहे हैं? अपने आप को फ्लॉक कह रहे हैं, अपने आप को शीप्स कह रहे हैं, जिसने अपने आप को फ्लॉक कहा और जो उस वुल्फ से भाग रहे हैं जो कि ब्लड थर्स्टी है। और वुल्फ को किसको कह रहे हैं? उस किंग को कह रहे हैं। तो वुल्फ इन्होंने कहा किंग को, और खुद को इन्होंने शीप कहा, और अल्लाह या क्योंकि वो क्रिश्चियन क्रीड था, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने इनका जिक्र किया है कुरान के अंदर और अल्लाह ने इनको मोमिन बना के शो किया है, तो अल्लाह ताला, याद रखें, मोमिनीन को एग्जाम्पल बनाकर अच्छी तरह से शो करते हैं। हम ये बिलीफ नहीं रखते कि ये असाबे कहफ जो थे ये ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वाले थे। आज क्रिश्चियंस इनके साथ ही एसोसिएट करते हैं, इसलिए ये जुमला इनका लिखा हुआ है, ये बाइबल का लिखा हुआ जुमला नहीं है। तो ये जो कि कह रहे हैं वी बिसीच यू गुड शेपर्ड, असल में ये शो ये करना चाह रहे हैं कि ये इन्होंने ईसा अलैहि सलाम को कहा था कि ईसा अलैहि सलाम क्योंकि अल्लाह के बेटे हैं तो हमने ईसा अलैहि सलाम से दुआ की थी। तो अब आप कॉन्सेप्ट देखें, शेपर्ड शीप और वुल्फ। शेपर्ड अपने शीप्स को वुल्फ से बचाने के लिए क्या करता है? शेपर्ड डॉग रखता है, सही। तो इस कहानी में सेवन स्लीपर्स के साथ और क्या आ गया? वो शेपर्ड डॉग आ गया। इसलिए आपको उनकी तस्वीरों के अंदर जो है जो चर्चेज में मिलती हैं उसमें वो शेपर्ड डॉग भी मिल जाता है कि इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह हमें वो हिफाजत करने वाला जो है एक कुत्ता दे दे जो हमारी इस किंग से हिफाजत करेगा। तो ये सारा वाकया जो है आपको इस तरह से मिलता है। और फिर ये लिखते हैं कि इसी तरह कुछ साल गुजर गए। कितने साल गुजरे ये आपको क्रिश्चियन अकाउंट में भी नहीं पता चलता। कुछ लोग कहते हैं 400, कुछ कहते हैं 300, कुछ कहते हैं 120, कुछ कहते हैं 140, तो डिफरेंट नंबर आपको मिलता है। उनका कहना ये है कि ये डिस्कवर कैसे हुए। अब आप देखें ये सारी डिटेल, इतनी डिटेल कुरान नहीं बताता। कुरान बिल्कुल तीन अल्फाज में कहानी सुना देता है। ये कहते हैं कि डिस्कवर कैसे हुए। एक मर्तबा एक शेपर्ड ही था जो अपना जानवरों का शेड बनाने के लिए पत्थर तलाश कर रहा था, और वो पत्थर तलाश करते करते इस गार के पास पहुंच गया। उसने देखा, अब जो दीवारें बनती थी सीमेंट तो नहीं होते थे ना उस दौर में, तो पत्थरों से दीवारें बनती थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा पाइल जो है वो गार के अंदर जो है वो पत्थरों का है जिसको ग्लू किया गया एक साथ, तो उसको वो पत्थर अपने शेड बनाने के लिए बहुत ही अच्छे लगे। उसने तोड़ तोड़ के वहां से वो पत्थर अपनी कार्ट में डालने शुरू किए, और जहां वो पत्थर अपनी कार्ट में डाल रहा था और रोशनी अंदर जाना शुरू हुई तो कुछ पत्थर लेने के बाद उसको महसूस हुआ कि अंदर तो इंसान है, और जब उसने झांक कर देखा तो उसे पता चला कि अंदर तो बहुत यंग लोग लड़के हैं और वो सो रहे हैं बहुत मजे से, बिल्कुल हेल्दी इंसान, किसी किस्म के डिकम्पोज्ड बॉडीज नहीं है उनके। तो फिर वहां से उसने फिर और पत्थर निकाले और इस तरह से इनके अकाउंट के मुताबिक जो था ये असाबे कहफ, पीपल ऑफ द केव, सेवन स्लीपर्स डिस्कवर हुए। अब जब ये डिस्कवर हुए तो बाय द टाइम इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और हमें भी ये बात मालूम है कि अब तकरीबन 200-300 साल गुजर चुके थे, किंग चेंज हो चुका था। और ये वो टाइम था जिस वक्त रोमन एम्पायर के ऊपर ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी बन चुका था। समझ आई आपको बात? वो वक्त जो था उसमें ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी नहीं था, उसमें एक डिफरेंट मुख्तलिफ माइथोलॉजीज थी, कहीं ग्रीक माइथोलॉजी थी, कहीं फिलोसफी थी, और कहीं ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स थे। इस वक्त पूरी रोमन एम्पायर पर जो ऑफिशियल रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था, और जो इस वक्त का किंग था, किंग थियोडोसियस उसका नाम आता है, ये किंग जो था ये बहुत अच्छा किंग था क्योंकि खुद क्रिश्चियन था। और जब ये इस तरह से लोग डिस्कवर हुए तो वो ऑनर करने के लिए किंग जो है ये एफेसिस खुद घोड़े पर बैठकर आया और इसने इन पीपल ऑफ द केव को ऑफर किया कि आप कैपिटल मेरे साथ चलिए और मैं वहां पर आपको अकोमोडेट करूंगा, जगह दूंगा। इन लोगों ने कहा इनके ट्रेडिशन के मुताबिक कि नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना था कि अल्लाह ताला लोगों को दोबारा उठाएगा, रिजरेक्शन होगा, और हमारा वो मकसद पूरा हो गया है और हम बहुत खुश हैं कि अब हर तरफ जो है वो ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स हैं, इसलिए कि क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन था। और हम इन्होंने शो ये करने की कोशिश की अपने कहानियों के जरिए कि हम बहुत खुश हैं कि जो अल्लाह का बेटा है ईसा अलैहि सलाम उनका बोलबाला हो गया है। हर कोई अपने हिसाब से कहानी मोल्ड कर लेता है ना, तो इन्होंने ये इस तरह से कहा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि दे रिफ्यूज टू लीव द केव, और फिर ये वापस अपनी गार में जाकर जो थे ये सो गए और फिर अल्लाह ताला ने इनको मौत दे दी। यह है क्रिश्चियन वर्जन इस पूरी कहानी का। और आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आपको कुरान की एलोक्वेंस समझ आती है, कुरान इतनी डिटेल नहीं बताता। अभी जो मैंने आपके सामने कहानी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब कुरान सुनने वाले लोग हैं, इस कहानी को इस ज्यूइश ट्रेडिशन से या क्रिश्चियन ट्रेडिशन से इस कहानी को सुनकर आप में से किसी का ईमान डगमगाया या आपको कुरान की और हकीकत आखिरत की और ज्यादा वाजे होती हुई नजर आई? जिसके सामने कुरान खुला हुआ होता है उस इंसान में अल्लाह फुरकान लगा देता है। कुरान को कहते हैं ना, कुरान का एक नाम है अल फुरकान। फुरकान का मतलब क्या है? ये आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वालिटी दे देती है जो सही और गलत की पहचान करा देती है। तो ये एक कहानी जो कुरान बयान करेगा, कुरान इसको एक डेडिकेशन की स्टोरी बनाकर बयान करेगा, और कुरान वाजे करेगा कि ये मोमिन लोग थे, कुरान वाजे करेगा कि ये ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स थे, अपने दौर के मुसलमान थे, शिर्क करने वाले नहीं थे, ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वाले नहीं थे। हिस्ट्री ये बताती है कि जिस टाइम पर ये लोग डिस्कवर हुए हैं, देखिए ये सब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, याद रखें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, ये सब वेग फिगर्स हैं। अगर अल्लाह ताला हमें असाबे कहफ के बारे में कुरान में ना बताते तो दुनिया में तो कई सूफी और सेंट्स गुजरे हैं, हमें तो सबका नहीं पता ना, हमने तो सबके लिए जो है वो जाकर तारीख नहीं खोली कि हम देखेंगे कि किस टाइम पे आए, कौन बादशाह था, क्या हालात थे, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। जिनका जिक्र कुरान में आ गया तो अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दे दिया कि हम इन नौजवानों से कुछ सीखें, हम इन आयात से कुछ अपने लिए सबक हासिल कर लें। असल चीज तो यही है, बाज़ औक़ात चीजें आपको बहुत फिलोसॉफिकल लग रही होती हैं लेकिन उस फिलॉसफी के अंदर समझने के बहुत गहरे सबक होते हैं। ये जिस टाइम पर डिस्कवर हुए हैं असाबे कहफ, आपको बताया ये वो वक्त था जिस वक्त क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन बन चुकी थी। क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल रिलीजन बनने से पहले का टाइम और ऑफिशियल रिलीजन बनने के बाद का टाइम टिल द यूरोपियन रेनेसांस, और यूरोपियन रेनेसांस से आज 2017 दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड। और मुझे लग रहा है कि मैं बेहतर है कि मैं उस पर बात कर लूं, इसलिए कि जो दज्जाली फितना है उसको समझने के लिए ये आयात इसी पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो कहानी है, वो तो एक फ्लो में हम 26 आयतें आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। ये जिस टाइम पे डिस्कवर हुए हैं तारीख के हिसाब से ये 5th या 6th सेंचुरी थी, और 5th या 6th सेंचुरी पर रोमन एम्पायर ने वर्डिक्ट पास कर दिया था कि ऑफिशियल रिलीजन जो होगा वो क्रिश्चियनिटी होगा। और इसका मतलब क्या था कि रिलीजन की आउटलाइन पॉल बनाएगा जो इनका पॉप होता है, जिसको ये फादर बोलते हैं, आज भी इनके पॉल होते हैं ना। उनका कहना ये था कि अब क्या फॉलो होगा, द पॉलियन डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज द ऑफिशियल रिलीजन। इसीलिए आप देखें इनको इतना वेलकम किया गया जब अल्लाह ताला ने इनको दोबारा उठाया, इसलिए कि ये लोग भी क्रिश्चियनिटी पर थे, ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स थे। ये जो टाइम था फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी का, जिसका मैं कह रही हूँ कि इसका इम्पैक्ट आज तक मौजूद है इस 21st सेंचुरी के अंदर भी, ये वो टाइम था जिसमें ये कहा गया कि अब रिलीजन जो होगा वो बाइबल डिसाइड नहीं करेगी बल्कि पॉल डिसाइड करेगा कि रिलीजन का राइट और रॉन्ग क्या होगा। जब बहसें हो रही थी कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं या नहीं है, जब बहस हो रही थी कि ईसा अलैहि सलाम को जो है वो क्रूसीफाई किया गया कि नहीं किया गया, जब बहसें हो रही थी इस बात की कि ईसा अलैहि सलाम क्या अल्लाह असल में क्या ईसा अलैहि सलाम की शक्ल में आया था या नहीं आया था, तो इस टाइम के अंदर फिलोसोफर्स बहुत मौजूद थे। फिलोसोफर्स ऐसी बातें करते हैं ना, आप देखें आज भी कौन ऐसी बातें सवाल निकालता है। आप बैठकर अगर अगर आप अल्लामा इकबाल को पढ़ती हैं, अल्लामा इकबाल वॉज अ फिलोसोफर, जब भी इतनी गहरी बातें करके चले गए, फिलोसोफर इन डेप्थ में जाते हैं। तो जो फिलोसोफर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस दौर के, उसमें बहुत उस वक्त बहसें हो रही थी और बहुत डिस्कशंस हो रही थी कि ईसा अलैहि सलाम थे कौन। जिस वक्त फिफ्थ सेंचुरी में, फिफ्थ एंड हाफ सेंचुरी में डिक्लेयर हुआ कि अब क्रिश्चियनिटी रिलीजन होगी और जो पॉल कहेगा वो माना जाएगा, इन सारे सारे अकीदों की इनकार कर दिया गया, अब इनमें से कोई बहस नहीं होगी। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन रोमन्स ने अपने इलाकों में से, अपने एम्पायर्स में से फिलोसोफर्स को डिपोर्ट कर दिया। फिलोसोफर्स को डिपोर्ट किया, उनको अपने अपने इलाकों से एक्सपेल किया, और उनको एक्सपेल करने के बाद इन्होंने कहा कि आज के बाद यही माना जाएगा जो पॉल कहेगा। एक इन्होंने फिलोसोफर्स को एक्सपेल किया, तो अब आपका क्या हुआ कि वो सोचने का मादा जो था वो खत्म हो गया। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जो चर्च के खिलाफ या पॉल की इंटरप्रिटेशन के खिलाफ बोलेगा वो अपोस्टेट होगा, वो मुर्तद होगा, और मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाएगा, और मार के भी उसको बरी नहीं किया जाएगा, उसको ह्यूमिलिएटिंग डेथ दी जाएगी। तो वो क्रिश्चियंस जो आज इस्लाम पर एक्सट्रीमिज्म का नारा लगाते हैं, ये क्या है? असल में ये एक्सट्रीमिज्म था वैसे, टू बी वेरी फ्रेंक, इसी वजह से यूरोपियन रेनेसांस आया है। इन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स को निकाल दिया, फिलोसोफर्स को निकाल दिया, ये दोनों इन्होंने अपने इलाके खाली किए। फिलोसोफर जो सोचता था कि क्यों ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहें, इन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। इंटेलेक्चुअल्स जो सवाल उठाते थे कि भाई बाइबल तो ये नहीं कहती, पॉल ये कहता है, तो ऐसा क्यों है, इन्होंने उन इंटेलेक्चुअल्स को भी डिपोर्ट कर दिया कि बाइबल के खिलाफ और पॉल की इंटरप्रिटेशन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये दो काम किए। तीसरा काम जो इन्होंने किया इस टाइम में, सिक्स सेंचुरी में रोमन एम्पायर ने, इन्होंने एक डॉगमा पूरा पॉल के जरिए जो था वो इम्प्लीमेंट करवा दिया। डॉगमा कहते हैं एन आइडिया जिसको आप बिलीव करते हैं विदाउट थिंकिंग ऑन इट, आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड अ डॉगमा, जिसको आपने मानना है बस आंखें बंद करके, आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, आपको उसमें लूप होल्स नजर आते या नहीं नजर आते, यू हैव टू सबमिट, आपको मानना है। इनके डॉगमा में यह बात थी जो पॉल की तरफ से आई थी। नंबर वन, वो जो कॉन्सेप्ट है गॉड इज 3:1 और 1:3, ये वहां से कॉन्सेप्ट आया, यानी अब सब ये मानेंगे कि अल्लाह, ईसा अलैहि सलाम और रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल अलैहि सलाम, ये सब एक ही लाइन में है, ये तीनों जो है एक तरह से खुदा की कैटेगरी में हो गए। ये वो टाइम था जिसमें इन्होंने ये कहा कि जीसस को हम गॉड मानेंगे, ये डॉगमे का हिस्सा था। तीसरी चीज इन्होंने ये कही कि गॉड इनकार्नेटेड एज ह्यूमन बींग, यानी ईसा अलैहि सलाम की शक्ल में अल्लाह जमीन पर उतर के आ गया। चौथा, इसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया अपनी क्रिश्चियनिटी के ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे कि अब ईसा अलैहि सलाम क्रूसीफाई हो गए हैं और उन्होंने सारी इंसानियत के गुनाहों की सजा असल में खुद भुगत ली है, तो अब बाकी सारे इंसान जो हैं वो असल में इस तरह से सिनलेस हो जाएंगे, उनको सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो आज से ऑनवर्ड राइट और रॉन्ग होगा वो बाइबल डिसाइड नहीं करेगी, कौन डिसाइड करेगा, पॉल डिसाइड करेगा। तो आप देखें दीन को ये लोग इस तरह से सख्त करते चले गए, पॉप बताएगा, और फिर यहां तक वक्त आया कि बाइबल पब्लिश करने की इजाजत बंद कर दी गई, यहां तक वक्त आया कि बाइबल की ऑफिशियल कॉपी सिर्फ चर्च में होगी, कोई खुद नहीं पढ़ेगा बाइबल, इसलिए कि जब कोई खुद पढ़ेगा तो जहन में सवाल आएगा, और जब जहन में सवाल आएगा तो वो तो पॉप के या पॉल के खिलाफ आएगा, पॉल के खिलाफ उसकी इंटरप्रिटेशन के खिलाफ सवाल करेंगे तो ये तो ट्रीजन हो जाएगा, और ये ट्रीजन होगा तो इंसान अपोस्टेट हो जाएगा, अपोस्टेट होगा तो वाजिबुल कत्ल होगा और उसको मार दिया जाएगा। तो जब ये सारे हालात हुए इन सब के अंदर, ये इतना ऑपरेशन था, दिस वॉज रिलीजियस ऑपरेशन, कि लोगों को बाइबल पढ़ने से रोक दिया गया। इसी वजह से जो एक रेवोल्यूशन आया था, जिसको आप प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहते हैं, आज भी दो तरह के क्रिश्चियंस हैं ना, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो आया है ये इसी ऑपरेशन की वजह से आया था कि हम बाइबल खुद क्यों नहीं पढ़ सकते, हम बाइबल को खुद पढ़ेंगे, हमें इसकी इजाजत दी जाए। और इनका ख्याल ये था जो कैथोलिक्स थे कि जो पॉप होता है असल में वो सिनलेस होता है, वो गुनाह नहीं कर सकता है, तो वो जो कहेगा उसकी बात मानी जाएगी, वो फेबल समझते थे उसको, इनफेबल कहते थे कि ये इनफेबल है। यही फर्क है पॉप्स में और प्रॉफिट्स में, अंबिया गलती कर सकते हैं, हाँ सिर्फ फर्क यह है कि जब अंबिया गलती करते हैं तो इंसान उनको करेक्ट नहीं करता, कौन करेक्ट करता है उनको, अल्लाह करेक्ट करता है उनको।